जैसे ही आयांश ने आरवी से कहा, तुम्हारा शोर सुनकर तो कान भी सुन पड़ जाते हैं। ये सुनते ही आरवी मुस्कुरा उठी और आयांश की ओर देखते हुए एकटक ताली बजाने लगी। ये हरकत देख आयांश की भौहें सिकुड़ गईं और वो आरवी को घूरते हुए बोला, क्या कर रही हो?
दांत दे रही हूँ, नहीं समझे?
अभी समझा देती हूँ। बात भी कौन कर रहा है आप, जो हर वक्त कौए जैसे कां कां कर चिल्लाते रहते हैं, कभी उस पर, कभी इस पर, कभी मुझ पर। आईना कोई नहीं मिला होगा तो आईने के सामने खड़े होकर खुद पर भी चिल्लाते ही होंगे, है ना? और प्यार से, आराम से बोले तो सदियां बीत गई होंगी ना। खैर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुझे कह रहे हैं जैसे खुद के बोलने पर तो दूसरों के कानों में मिश्री घुलती हो, खुद की जुबान से मानो फूल जड़ते हों जो दूसरों को सुहावना लगे। मेरे शोर से कान सुन तो पड़ते हैं, आपके शोर से बेचारे कान खराब ही हो जाएं। आए बड़े मुझे बोलने वाले, कान सुन पड़ जाते हैं, जैसे खुद किशोर कुमार हों जिसका बोलना कानों को भा जाए। आरवी एक ही सांस में बोल पड़ी, जिसका असर आयांश के गुस्से को हाई लेवल पर पहुंचा गया। आरवी की बात से इरिटेट होकर आयांश आरवी की ओर झपटा और उसे बाजुओं से पकड़कर वहीं दरवाजे से लगा लिया। कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही तुम्हारी, बहुत हिम्मत कर रही हो, भूलो मत जुबान काटकर हाथ में दे दूंगा, बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। मेरे सामने बोलने से पहले सोच लिया करो, वरना अंजाम क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती, गुस्से से दांत पीसते हुए। ये सुन आरवी की आंखें फैल गईं, वो थूक निगलते हुए अयान से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर अयांश उसके करीब आने लगा। बोलते वक्त तो बिल्कुल खौफ ना होता, मेरी करीबी से सहम क्यों जाती हो? अब भी निडर रहकर दिखाओ, तब तो बड़ा बड़ा बोल रही थी, अब चुप क्यों हो? अब क्यों छटपटा रही हो? क्यों मेरी पकड़ से खुद को आज़ाद करना चाह रही हो? अयांश मेहरा तुम्हारे जैसे बदलता नहीं पल में कुछ पल में कुछ, मैं एक जैसा ही रहता हूँ, पर तुम देखो खुद को, वैसे तो बड़ी हिम्मत कर लेती हो, अब कहाँ गई हिम्मत? क्यों मेरे पास आते ही जुबान के ताले लग गए? क्यों मेरे छूने से घबरा उठी? बोलो मिसेज मेहरा, आरवी के करीब होकर फुसफुसाते हुए। तभी आरवी ने अपना मुंह खोला। छूना उसका रास आता है जो पसंद का हो आपके, नापसंद शख्स के साथ सिवाय घुटन के कुछ नहीं होता। ये सुनते ही आयांश का जबरा कस गया और उसकी पकड़ आरवी की बाजुओं पर और कस गई, जिससे आरवी की आंखें भीग गईं। तभी आयांश आरवी को पकड़कर घुमाया और खुद दरवाजे से पीठ लगाकर आरवी को अपने और करीब कर लिया। अब छुड़ाकर दिखाओगी, ये नापसंद शख्स ही तुम्हें छू सकता है, वरना किसी और को अब तुम्हारा अक्स भी नसीब ना होगा। ये सुनते ही आरवी ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें नम थीं, पर आयांश की आंखों में सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा था। आरवी के चेहरे पर दर्द की झलक देखकर भी आयांश को फर्क ना पड़ा, ना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले और ना ही उसने अपनी पकड़ में ढील दी। दोनों खामोशी से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तभी आरवी की आंखें खुद ही बंद होने लगीं और अचानक ही उसकी गर्दन पीछे की तरफ गिर गई। ये देख आयांश ने उसकी बाहें छोड़कर उसकी कमर में अपनी बाहें फंसा ली। आरवी, आरवी आयांश की बाहों में गिर चुकी थी। ये देख आयांश उस पर चिल्लाया, क्या कर रही हो? उठो, अगर तुम्हारी ये कोई एक्टिंग है तो बंद करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। खड़ी हो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए आयांश ने आरवी को खड़ा करने की कोशिश की, पर वो उसके कंधे पर आ गिरी। आरवी ने कोई हरकत नहीं की और ना ही उसकी सुनी, तो आयांश उसके चेहरे की ओर देखकर खुद से बड़बड़ाया, मेरी बातें सुनकर बेहोश हो गई क्या? तभी आयांश ने आरवी को अपने बाहों में उठाया और राधे को आवाज़ दी और खुद आरवी को लेकर बेड की ओर बढ़ गया। राधे किचन से हाथ में पानी का जग लिए आ रहा था। जैसे ही आयांश की आवाज़ सुनी तो आयांश बाबा कहते हुए जल्दी से ऊपर पहुंचा। तब तक आयांश आरवी को बेड पर लिटा चुका था। हाँ आयांश बाबा, क्या हुआ? राधे ने रूम में तेजी से चलकर आते हुए पूछा। आयांश बेड से उठकर उसकी ओर देखते हुए बोला, कहाँ थे? इतनी देर लगती है क्या आने में? आ ही रहा था, राधे ने सहमी सी आवाज़ में कहा। तभी बेड पर लेटी आरवी की ओर देखकर बोला, क्या हुआ? बेहोश हो गई है फिर से? होना ही था, कुछ खाया पिया जो नहीं था, खुद से ही बड़बड़ाते हुए। आयांश साइड में होते हुए बोला, क्या बोल रहे हो खुद से ही? आगे आकर होश मिलाओ इसे, आरवी की ओर हाथ करके। और यहाँ कमरे में पानी क्यों नहीं था? राधे कुछ नहीं बोला और हाथ में पकड़ा जग लेकर आरवी की ओर बढ़ गया। उसने आरवी के मुंह पर पानी के छींटे मारे। पानी के छींटे पड़ते ही आरवी होश में आने लगी। राधे ने जग बेड के टेबल पर रखा और आरवी को हिलता देख फट से पूछा, आप ठीक है ना? आरवी अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेती है। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। आरवी कुछ बोलती कि तभी आयांश बोल पड़ा, होश में आ गई है ना? ठीक ही है, दिख नहीं रही, राधे को घूरते हुए। ये सुन राधे बेड से दूर होकर वापस उसी पहले वाली जगह आकर खड़ा हो गया। तभी आरवी ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े आयांश की ओर देखकर बोली, आपको चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं आता है क्या? और तुम्हें बेहोश होने के अलावा आईना कुछ नहीं आता? खुद को इतना स्ट्रांग बताती हो, मैं ये मैं वो, पर तुमसे कमजोर कोई नहीं हो सकता है। जब देखो बेहोश होकर गिरती पड़ती रहती हो। आपकी ही बदौलत है मिस्टर मेहरा, वरना आरवी चतुर्वेदी अब तक कभी बेहोश नहीं हुई, आरवी बेड पर बैठते हुए बोली।
आरवी को उठने में तकलीफ होते देख राधे उसकी मदद के लिए अपना कदम बढ़ाने लगा, पर आयांश को अपनी तरफ घूरता देख उसने अपने कदम वहीं रोक लिए। रहने दीजिए राधे भैया, हम ठीक हैं, हमें मदद की जरूरत नहीं, खामखा आप भी निकले जाएंगे। दिख नहीं रहा आपके आयांश बाबा भड़के हुए हैं, आप दूर ही रहिए, ऐसे ही चपेट में आपको भी ले लेंगे। बेड से सटकर बैठते हुए आरवी ने आयांश की ओर घूरते हुए बोला, तो मुझसे उलझती क्यों हो तुम, जो बार बार बेहोश होना तुम्हारे साथ होने लगा है। वैसे भी फालतू में बकबक करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने की आदत है तुम्हारी, फिर बीमारी से बेहोश नहीं होगी तो क्या होगी, आयांश आरवी की ओर बढ़ते हुए बोला। तभी राधे बोल पड़ा, बेहोश ही होगी ना आयांश बाबा, सुबह से बस एक जूस पिया था, लंच भी नहीं किया था इन्होंने, अच्छा खाना बनाया मालिक के कहने पर, सोचा अब तक तो भूख लगी होगी, अब तो खा लेगी, पर इनका तब मन ना था, फिर आपने ही मना कर दिया, कुछ नहीं देना खाने पीने को, और ये कब से चिल्ला रही थी दरवाजा खुलवाने के लिए, कुछ खाया पिया ना था कब से, तो ताकत कहाँ से रहती, बेहोशी होना था ना, पीने का पानी तक नहीं था कमरे में, आरवी की ओर देखते हुए। ये सुनते ही आयांश राधे पर चिल्लाया, क्या? तभी आरवी बोली, इन पर क्यों चिल्ला रहे हैं अब आप, ऑर्डर तो आपका ही था और दरवाजा भी आप ही बंद करके गए थे, वरना भूखे तो रह लेते हम कैसे भी करके, पर प्यासे ना रह पाए, गला सूख रहा था, दरवाजा खुलवाने के लिए चिल्लाए तो और गला सूख गया, बाहर भी ना जा पाए और ना ही आपके खौफ से किसी ने दरवाजा खोला, और तो और एक ग्लास पानी था यहाँ जो ये जानबूझकर छोड़कर गए थे, वो भी आप जाते जाते, दबी सी आवाज में अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए, पानी की कमी होने पर बेहोशी होंगे, हीरोइन तो बनने से रहे, धीरे से फुसफुसाते हुए। आरवी के इतना कहते ही आयांश को ख्याल आया कि उसने वो पानी आरवी को धक्के से पिला दिया था और ग्लास भी तोड़ दिया था जिसके टुकड़े अभी भी वहां साइड में बिखरे पड़े थे। आयांश को चुप खड़ा देख आरवी फिर बोली, अपने किए पर आपको पछतावा तो होगा नहीं, फिर किस बात का झटका लगाए जो जैसे शॉक दिखाई पड़ रहे हैं। ये सुना आयांश मुस्कुरा दिया और आरवी के ऊपर झुकते हुए बोला,
शॉक्ड? और मैं बिल्कुल भी नहीं, वैसे पता तो चल गया होगा ना, ना कहने पर क्या हो सकता है तुम्हारे साथ, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें खुद की ही खबर नहीं रहेगी, और फिर कैसे रोकोगी आयांश मेहरा को अपने करीब आने से, आरवी मेहरा। आरवी के माथे पर उंगली फेरते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए। ये सुनते ही आरवी की आंखें फैल गई और वो अपनी पलकें लगातार झपकाने लगी। तभी आयांश फट से उसे दूर हुआ और वहां से चला गया। उसको जाते देख आरवी मन ही मन खुद से बोली, और उम्मीद क्या की जा सकती है आपसे, गिरे हुए ही काम करने आपको, पर आरवी कहीं तुम फिर से बेहोश हुई और ये, नो नो, ऐसा नहीं होने देना है। तभी राधे की आवाज से आरवी का ध्यान उसकी ओर गया, आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। अच्छा भैया कुछ खाने को दे दो, आपके आयांश बाबा की बातों से गुस्से से पेट नहीं भरता है, पता है ना, खाती पीती लड़की हूँ, खाना ना मिले तो कमजोरी आ जाती है और बस उसी वजह से बेहोश हो गई, आप भी जानते हैं, पर अब और नहीं होना, होश में रहना जरूरी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं कब से, दे दो खाना पीना कुछ। राधे की ओर मासूमियत से देखते हुए, आप जिद क्यों करती हैं, जब देते हैं तब तो लेती नहीं, आयांश बाबा आपसे भी बड़े जिद्दी हैं, नतीजा देखा, दूसरी बार आप बेहोश, राधे आरवी की ओर आते हुए बोला। जिद्दी तो हम भी कम नहीं, बस आपके आयांश बाबा का रौब चलता है, हमारी फिर कहाँ सुनवाई होती हो, बट आप पक्का मना ना करेंगे, एक बार भी ना करेंगे, जान गए नुकसान हमारा ही है, ला दो। पर आयांश बाबा, राधे बाहर की ओर देखते हुए बोला, अरे मना करने पर ना देने को बोला है, मांगने पर भी ना देने को थोड़ी कहा है, आज तो इनके दादाजी ने भी कुछ ना किया, हमें तो लगा था एक वो है जो डरते नहीं, एनीवे आज तो चिल्ला चिल्ला कर हमारा गला भी सूख गया। अपने गले को टच करते हुए आरवी ने कहा, ठीक है हम लाते हैं कुछ खाने पीने को, और मालिक ने आपको बचाए रखने के लिए कुछ ना किया, राधे बोला, आप बस खाने को ला दीजिए, पानी तो है ना यहाँ, यही दे दीजिए। टेबल पर रखे जग की ओर इशारा करते हुए आरवी बोली, पर यहाँ गिलास नहीं, राधे बोला, कोई ना हम इसी से काम चला लेंगे, दे दो। तभी राधे ने जग आरवी को पकड़ा दिया और आते हैं कहकर वहां से चला गया। आरवी जग की ओर देखते हुए बोली, अब से नो खाने को मना, नो पीने को, बार बार बेहोश होती रही ना, तो अभी कमरे के बेड पर हूँ और पता चले हॉस्पिटल के बेड पर मिलूँ, और इस डेविल का कोई भरोसा भी नहीं, और इनसे उलझने बहस लड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए, हराना भी इनको, अपना प्लान भी सक्सेस करना है, जिसके लिए कमजोर होने का बेहोश होने का ये वक्त नहीं, ताकत चाहिए आरवी, एनर्जी, पर क्या करे, मूड ऑफ हो तब कहाँ कुछ खाया पिया जाता है, पर मिस्टर मेहरा को कैसे समझ आएगा, इनको तो बस ऑर्डर देना आता है, ले जाओ खाना, और बंद करके चले जाते हैं, फिर इनके डर से कोई कुछ नहीं करता, चाहे बंदा मतलब बंदी मर जाए, कहकर आरवी जग ऊपर कर पानी पीने लगी। राधे आयांश के कमरे के सामने जा रहा था, तभी आयांश उसकी ओर आते हुए बोला, मेरा खाना भी साथ लेकर आना।
ये सुन राधे एकटक उसकी ओर देखने लगा तो अयांश फिर बोला, खाना लाने को कहा है, जहर नहीं जो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, और आज मैं बाहर से खाकर नहीं आया तो मेरे लिए भी लाओ। इतना कहे अयांश आरवी के कमरे में चला गया। राधे अपना सिर खुजाते हुए नीचे चला गया। ये अयांश बाबा समझ तो आते नहीं थे, अब जिनसे शादी करके आई है वो भी समझ से बाहर है मेरी तो, न जाने दोनों किस मिट्टी से बने हैं, जो सोचो कहो उसका उल्टा ही करते हैं। खाने को कहो तो खाना नहीं, ना कहो तो खाना दो। आरवी जग से पानी पी रही थी तभी अयांश अंदर कमरे में आते हुए बोला, पिलो पिलो, बहुत प्यासी हो तुम, फुल करो अपने अंदर की टंकी पानी से, क्या पता फिर प्यासा मरना पड़े, एक बूंद भी नसीब ना हो। ये सुनते ही आरवी के हाथ से जग छूटकर बेड पर गिर गया और वो अयांश की ओर देखते हुए खांसने लगी। अयांश सोफे पर बैठते हुए बोला, कोई काम सही से आता है तुम्हें? आरवी फट से बेड से उठी, अपने कपड़े झाड़कर जग बेड से उठाकर बेड के टेबल पर रखते हुए बोली, जहां आप हो वहां सही कुछ हो सकता है क्या? और हाँ, इतनी भी बेवकूफ नहीं कि भूखी प्यासी मरू, खाना मंगवा लिया और अब मूड हो या ना हो जरूर खाऊंगी। अयांश की ओर देखते हुए, खाना ही पड़ेगा, लिमिटेड ऑफर में जो होगा, खाना है तो तभी खाओ वरना भूखे रहो। मुस्कुराते हुए सोफे पर बाहें फैलाते हुए, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना, इतना तो हिटलर भी बुरा ना होगा जितना आप हैं। तो मैं हिटलर के टाइम की थोड़ी हूँ, वो सदियों पहले का था और मैं आज का, डिफरेंस तो होगा ना। भौहें उचकाते हुए, हो गया आपका, फिर भी उसे मैं अच्छा बोल दूं, आपको तो भूल से भी ना बोलूं, अपनी हिटलरगिरी दिखाकर संतुष्टि मिल गई हो तो अब जाइए यहां से। नहीं जा रहा। क्यों, आपका भी तो कमरा है ना, और ये आपका थोड़ी है, ये घर मेरा, यहाँ के सारे कमरे मेरे हैं और तुम भी मेरी, तो मैं कहीं भी रहूं कहीं भी जाऊं, अब क्या तुम मुझे बताओगी क्या मेरा है क्या नहीं? ये सुन आरवी भौहें सिकोड़ती हुई अयांश को घूरने लगी। तभी राधे खाना ले आया और अयांश के सामने टेबल पर खाना रखा और अयांश को खाना परोसते हुए बोला, अयांश बाबा आपका खाना। और ये आपका, आरवी की ओर खाने की प्लेट लेकर जाते हुए राधे ने कहा। ये भी खाएंगे, आरवी तपाक से बोली। क्यों, मुझे भूख नहीं लगती, मैं भी इंसान हूँ। इंसान, इस पर आरवी मुस्कुरा दी और बोली, आपको याद भी है आप इंसान हैं, आपके कर्म तो आपको कुछ और ही बना रहे हैं, वैसे मैंने कहा था कि आप यहाँ खाएंगे खाना। खाएंगे नहीं, खा रहा हूँ, जुबान चलानी बंद कर चुपचाप खाना लो और खाओ वरना फिर सामने से चला जाएगा, अयांश ने अपना खाना खाते हुए बोला। ये सुनते ही आरवी ने फट से राधे के हाथ से खाना ले लिया और खड़े खड़े खाने लगी। तभी राधे बेड की ओर इशारा करते हुए बोला, बैठकर खा लीजिए। नहीं, वो बेड गीला है, पानी गिर गया था। ओ, हम अभी साफ कर देते हैं, चादर भी बदल देंगे, कहकर राधे बेड की ओर बढ़ने लगा कि अयांश ने उसे रोक दिया। रुको,